चलते चलते आपके राहों में हम आप सबाबा बन के फरिश्ता रहेंगे हम आप सबाबा बन के फरिश्ता रहेंगे हम चलते चलते
स्पिरिचुअल जे वॉकिंग। जे वॉकिंग मीन्स जब हम रोड क्रॉस करते हैं तो उस समय डेंजरस तरीके से, मतलब जहां पे नहीं करना चाहिए उस एरिया में हम रोड क्रॉस करते हैं और उस समय एक्सीडेंट का और उसका भय रहता है। तो यहां पे हम स्पिरिचुअल जे वॉकिंग डिस्कस करेंगे। स्पिरिचुअल जे वॉकिंग मीन्स जब हम ज्ञान में चलते हैं तो उसमें बहुत सारे, हम वैसे तो स्मूथली चलते हैं लेकिन कभी कभी हम ऐसी मर्यादाएं या अपने जो सूक्ष्म नियम है, दिनचर्या है, धारणाएं हैं, उसको हम क्रॉस करते हैं। तो या फिर हम मनमत पे थोड़ा भी सूक्ष्म में चलते हैं तो वो हमारी, हमें कहीं ना कहीं डेंजर क्रिएट करता है। और कभी कभी हम ये शुरुआत में फील नहीं करते हैं लेकिन फिर हम एक अलग ही ज्ञान योग से थोड़ा अलग ही चले जाते हैं, अलग रास्ते पे चले जाते हैं। तो हम ऐसे कुछ मर्यादाओं की चर्चा करेंगे कि जिसको हम कहां कहां पे ब्रेक करते हैं या हम अपनी जर्नी में कहां कहां पे कुछ डाइवर्जन ले लेते हैं और उससे फिर हमारी उन्नति में या एक्सीडेंट होने की संभावना रहती है। तो सबसे पहले हम अगर अपनी दिनचर्या की बात करें, ब्राह्मण जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी दिनचर्या। जैसे बाबा कहते हैं कि आप मोस्ट VVVIP हो, तो जो VIPs होते हैं उनकी दिनचर्या का एक एक सेकंड और एक एक उनकी इवेंट होती है वो पहले से डिसाइडेड होती है। और हमें भी ये हमारा ईश्वरीय नियम है कि दिनचर्या हमारी एक्यूरेट होनी चाहिए, जो हमारी डायरी के पीछे भी लिखी होती है। और उसके अंदर बहुत सारी ऐसी इवेंट है, अमृत वेला से लेकर के रात तक, शुरू से लेकर के रात को चार्ट बाबा को लेटर, चार्ट बाबा को भोग लगाना, उसके अलावा स्वाध्याय, मतलब मुरली हम पढ़ते तो है, सुनते तो है, लेकिन उसके अलावा उसको पढ़ना और उसका अध्ययन करना, अलग अलग मेथड जो यहाँ से सभी ने बहुत पुरुषार्थ करके निकाली है, 108 मेथड, उसमें से दो तीन मेथड या कुछ ऐसे लेकर के अलग अलग तरीके से उसको नवीन बना करके रोज पढ़ना, उसको नोट्स करना, पॉइंट्स बनाना, तो ये सबसे वो स्वाध्याय भी आता है। तो दिनचर्या के अंदर ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जहां पे हम केयरलेस होते हैं और जिसकी वजह से हमारी उन्नति में डाउनफॉल आता है? तो सबसे पहले तो अमृत वेला, और अमृत वेला की शुरुआत होती है रात से। मतलब रात को सोने से, रात को टाइम से सोएंगे तो सुबह टाइम से उठेंगे, तो उसमें भी हम कभी कभी महसूस करते हैं कि कुछ पीरियड सेवाओं में बहुत ज्यादा व्यस्त होते हैं, तो कुछ पीरियड ऐसा आता है कि एक हफ्ता या 10 दिन ऐसा होता है कि उस समय कर तो रहे लेकिन थकावट हो रही है, या अच्छा योग नहीं हो रहा है, या फिर हमारा जो ड्यूरेशन है वो कम होता जा रहा है। तो उस समय हमें पहले से ही, उस समय हमारा उतना अटेंशन होना चाहिए कि हम अपना इंट्रोस्पेक्शन करके हम उसको शुरू में ही उसको एड्रेस कर ले कि क्यों ये हो रहा है, नहीं तो फिर एक लंबे समय के बाद जब हम रियलाइज करते हैं तो बहुत सारा नुकसान हो गया होता है उस समय। फिर सेकंड अमृत वेला के बाद मुरली, तो मुरली में भी कभी कभी, जैसे अभी तो डिजिटल हो गया है तो कई बार हम मुरली को भी, कई लोग क्लास में बिजी होने की वजह से या कोई एक्सक्यूज देकर के क्लास में नहीं आते हैं, और फिर संगठन से दूर होते होते मुरली पढ़ते हैं, लेकिन वो जो शक्ति मिलनी चाहिए, जो आत्मा के अंदर जो ऊर्जा बढ़नी चाहिए वो नहीं बढ़ती, इसीलिए वो फिर धीरे धीरे अकेले हो जाते हैं। और बाबा, जो बाबा कहते हैं ना कि माया कोई भी पहले अटैक करता है तो क्या करता है, संगठन से दूर करता है, अकेला करता है, और उसके बाद में पार करता है। तो उसके लिए मुरली को संगठन में सुनना बहुत जरूरी है, और सुनने के बाद जैसे हमने कहा उसका अध्ययन करना, चिंतन करना एकांत में। एक जगदीश भाई का क्लास है, उस कुमारियों के लिए शायद है, उसमें बाबा, उसमें उन्होंने इसके ऊपर बहुत महत्व दिया है कि आप कम से कम आधा घंटा निकाल करके पूरी दिनचर्या में से मुरली के ऊपर स्टडी करो अलग से, ज्यादा नहीं मिलता है तो 15 मिनट्स, लेकिन उसको एक दिनचर्या का एक पार्ट बनाओ। तो मुरली, मुरली का चिंतन, और उसको जितना ज्यादा पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा पढ़ना, लेकिन उसको एकाग्रता से जितना पढ़ेंगे, कई बार हमने देखा है कि हम एक ही मुरली एक घंटे तक पढ़ते रहते हैं, पेज फिरता नहीं है लेकिन कुछ याद नहीं रहता है, और कभी कभी हम देखते हैं कि 10 मिनट भी हम एकाग्रता से पढ़ते हैं तो फिर वो याद रह जाता है। जैसे हम लोग जब स्पीड में चलाते हैं गाड़ी या बाइक या कुछ भी, तो हमारा अटेंशन बहुत रहता है उस समय कि एकदम हमारा फोकस रहता है, हम इधर उधर नहीं देखते, उस समय हमारा फोकस ड्राइविंग पे ही होता है, और जब हम लेजी होकर के थोड़ा ऐसे चलाते हैं स्लो तो एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि हम थोड़े समय में पढ़ेंगे तो हमारा कॉन्सेंट्रेशन या याद नहीं रहेगा, लंबा समय नहीं, लेकिन बीच बीच में दिनचर्या में थोड़ा थोड़ा 5 मिनट 10 मिनट जितना टाइम मिलता है तो उसमें उसको रिवाइज करके उसको याद रखने की कोशिश करें। उसके बाद में फिर हम जब दिनचर्या में, जब कर्म में आते हैं, तो उस समय भी बीच बीच में जो ट्रैफिक कंट्रोल वगैरह जो हमारा बना हुआ है, और एक एक घंटे के बाद जो हम ड्रिल करते हैं, तो ये सब भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये स्पिरिचुअल वर्कआउट है। जैसे लोग जो बॉडी कॉन्शियस होते हैं वो अपनी बॉडी को वो बिल्ड करने के लिए वर्कआउट के ऊपर बहुत फोकस रखते हैं, और कितने घंटों तक वो लोग जिम में और उसमें बिताते हैं। तो हम लोग को, हमारा स्पिरिचुअल वर्कआउट है, तो उसके अंदर भी हम जो दिनचर्या के अंदर, जो शुरू में अमृत वेला और नुमा शाम के बाद का जो है वो अलग पीरियड है, लेकिन जो दिन भर में हम कर्म करते हैं उस समय बीच बीच में ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमारी स्पिरिचुअल मसल्स डेवलप करेंगे, क्या कर सकते हैं उसमें, ड्रिल्स कर सकते हैं। हाँ, हर घंटे में 1 मिनट बाबा को याद करना, ड्रिल्स कर सकते हैं बीच बीच में, और स्वमान का अभ्यास, स्वमान का अभ्यास कर सकते हैं, सेल्फ टॉक कर सकते हैं, खुद से बातें करना, बाबा से बातें करना, रूहरिहान करना, आने और जाने का अभ्यास, आना और जाना, सकाश देना, मनसा सेवा जैसे अभी डिस्कस हुआ, क्योंकि एक समय ऐसा आएगा जब बाकी सेवाएं काम नहीं करेंगी। जैसे हम कल सोच रहे थे कि जैसे पहले के जमाने में मैनुअल जमाना होता था तो जिनके राइटिंग अच्छे होते थे तो उनकी वैल्यू होती थी, या अभी भी हम लोगों को ऑफिस में लोग कहते हैं कि फलानी ब्रांच का जो क्लर्क है उनकी राइटिंग बहुत सुंदर है, लेकिन अभी किसी को पता ही नहीं है कि उनके राइटिंग कैसे है, लेकिन जो पुराने लोग हैं वो बोलते हैं कि इनके राइटिंग बहुत सुंदर है। तो क्योंकि अभी तो सारा कंप्यूटर का जमाना हो गया तो अभी उसकी कोई उतनी वैल्यू नहीं है, अभी जमाना वो बदल गया। वैसे एक समय आएगा जब वाचा सेवा या और सेवाओं का टाइम नहीं होगा, उस समय मनसा सेवा ही काम में आएगी, तो उसके लिए हमें पहले से तैयार रहना है। तो बीच बीच में मनसा सेवा का भी अभ्यास करें, और मनसा सेवा और कुछ नहीं है, अलग से कोई हमें कोई प्रोसेस नहीं है, वो रिजल्ट है हमारे, जैसे कहा एलिवेटेड थॉट्स, एलिवेटेड थॉट्स जो हमारे होते हैं उससे ऑटोमेटिक मनसा सेवा होती है। उसके बाद में आत्मिक दृष्टि, आत्मिक दृष्टि का अभ्यास, क्योंकि यही हमारा फाउंडेशन है। और कल हम सोच रहे थे कि अगर हम आत्मा समझने से ज्यादा ऐसे समझे कि हम हीरा है, जैसे हमारे पास कोई बहुत वैल्यूबल चीज होती है तो हम उसको बहुत देखते हैं ना बीच बीच में, मतलब उसको उसके ऊपर हमारा फोकस रहता है पूरा। तो अगर हम आत्मा हो उससे अलग कि मैं एक हीरा हूं और यहाँ बहुत सुंदर हीरा है जो कि बहुत ही वैल्यूबल है, तो ऐसा अगर समझेंगे तो हमारी बार बार वहां पर ध्यान जाएगा। उसके बाद क्या क्या व्हाट्सएप समझना उसके बाद में और क्या कर सकते हैं दिनचर्या में? साक्षी, साक्षीपन का अभ्यास, बाबा के साथ का अभ्यास, लिख सकते हैं, चिंतन लिख सकते हैं बीच बीच में, पढ़ सकते हैं अलग से, बाबा साथ है ये फील कर सकते हैं पूरा दिन कि बाबा मेरे साथ है, बाबा की छत्र छाया में है, बाबा से रूरियान। तो ये अलग अलग स्थिति का अभ्यास, फरिश्ता स्थिति का अभ्यास, स्वमान का अभ्यास, सभी को फरिश्ता स्वरूप में देखना वो पूछ लेगा आज, वो पूछ लेगा आज का स्लोगन क्या था फिर हम तो ये सब जब हम दिनचर्या में अगर इन सब के ऊपर हमारा फोकस हटता है तो फिर हम कुछ और करने लगते हैं, मतलब वो जिब्रा क्रॉसिंग के अलावा चले जाते हैं, क्योंकि हमारा मन खाली नहीं रहता है अगर हम इन सब से हमारा फोकस हटता है। कहते हैं वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज, तो वो अटेंशन हमारा वहां से हट करके कहीं और चला जाता है तो फिर एनर्जी उस प्रकार की फ्लो होने लगती है और उसका रिजल्ट भी फिर वैसा मिलता है। तो इसलिए दिनचर्या में भी हमें बीच बीच में ये ध्यान रखना है कि हम जिब्रा क्रॉसिंग के अलावा एरिया में या डेंजरस जोन में ना चले जाए। आई चूज द लिस्ट ट्रेवल्ड, है ना, किसी ने बोला है ना, आई चूज देयर वेयर टू वेज लेस ट्रेवल्ड। उसके बाद में नुमा शाम का योग, उस समय भी आधा घंटा कम से कम अच्छे से योग करने के लिए निकालना चाहिए, नहीं तो फिर नुमा शाम को और भी एक्टिविटीज रहती है, खास करके जो ऑफिस या जिनको वर्क रहता है उनको तो शाम को भी काम रहता है, लेकिन फिर भी आधा घंटा निकाल करके कम से कम उस समय पावरफुल योग करना चाहिए। उसके बाद में रात को आधा घंटा वो करो, आधा घंटा ये करो उसके बाद 7:30 के बाद हम थोड़ा सा टेरेस पे या उस पे एक इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए 15-20 मिनट। उस समय वॉक करते समय पूरे दिन का देखें कि कहां कहां हमारी गलती हुई या कहां कहां पे हम इम्प्रूव कर सकते थे या कौन से ऐसे शब्द थे उसको हम और अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते थे। तो वो हमें दिनचर्या की एक चेकिंग शाम को करने से बड़ा अच्छा एक इम्प्रूवमेंट होता है हमारे में, तो वो एक दिनचर्या का हिस्सा बना सकते हो उसको। उसके बाद में रात को उसको फिर बाद में अलग अलग देखते हैं थोड़ा इसमें ही दिनचर्या के बाद में। तो रात को फिर उसके बाद में भोजन के बाद डिजिटल नगरी, भोजन के बाद में क्या करेंगे? बाबा को रिपोर्ट देना है, चार्ट, रात्रि क्लास करे तो अच्छा है, रात्रि क्लास अकेले रहते हैं तो भी करना चाहिए, कुछ पढ़ना चाहिए, कोई अव्यक्त मुरली या कोई सीरीज जो स्पार्क की बनी हुई है, अगर साथ में करते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन साथ में नहीं कर सकते तो अलग से, जैसे एज ऑफ हम एक ऑफिशियल रात्रि क्लास करते हैं वैसे अलग से बैठ करके रात्रि क्लास करना चाहिए। उसके बाद में बाबा को चार्ट दे करके, लेटर लिखना चाहो तो लेटर और चार्ट, और फिर बाबा को सब सुना करके हल्का हो करके, योग करके गुड नाइट। तो ये दिनचर्या का बात थी। और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जहां पे डेंजर है, वो बहुत डेंजरस है, जो खास करके हमारी ब्राह्मण जीवन में, क्या रिलेशंस, संबंध। क्योंकि रिलेशंस, हम कहते हैं कि हम कोई ऐसे योगी नहीं है, राजयोगी हम, लेकिन राजयोगी मतलब ये नहीं कि संबंधों की जाल में हम फंसते जाए। संबंध अच्छे हैं, लेकिन संबंधों में डिटैचमेंट बहुत जरूरी है। डिटैचमेंट के बिगर संबंधों में वो नहीं आता। संबंधों में जो सुख है ना, वो डिटैचमेंट की वजह से ही है। अगर उसमें, जैसे ट्रेन की पटरी होती है ना, उसमें थोड़ा सा भी डिस्टेंस कम हो गया तो फिर सारी वो हो जाएगा। तो वैसे संबंधों के अंदर भी अलौकिकता बहुत जरूरी है। अगर न्यारापन थोड़ा ज्यादा होगा तो चलेगा, लेकिन उधर का बैलेंस थोड़ा उधर नहीं चला जाना। नहीं नहीं, वो मैनेज हो जाएगा। लेकिन कहीं पे हम मतलब स्कोप ना हो, नहीं तो डेंजर हो जाएगा। तो संबंधों में अलौकिकता हो, लौकिकता ना हो, और संबंधों में मधुरता हो। क्योंकि अगर किसी को कुछ एक शब्द सुना दिया तो पूरे लाइफ आपके पीछे लग जाएगा वो। इसलिए संबंधों में मधुरता भी हो और अपनापन हो, पारदर्शिता हो, ट्रांसपेरेंसी हो, स्वच्छता हो, विश्वास। तो ये सब तो ठीक है ये सब, लेकिन संबंधों में एक डेंजरस कहाँ होता है संबंधों के अंदर? हाँ, जब संघ में चले जाते हैं। सुन, फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, ईर्ष्या। और जब हम किसी के करीब आते हैं ना, तो फिर उनके अवगुण, आपको हमारे बारे में अभी कुछ नहीं पता है, आपको लगेगा, लेकिन हम अगर साथ में रहेंगे कुछ महीने तो हो सकता है कि हमको आपकी और आपको हमारी अवगुण या जो भी कहे नेगेटिविटी दिखने लगेंगे। इसलिए संबंधों में एक सेफ डिस्टेंस होना बहुत जरूरी है। और ये डेंजर है, बहुत सारे ब्राह्मण अभी उसकी माया जाल में फंसे हुए हैं संबंधों की। ब्लेम गेम, आरोप करना, शिकायत करना किसी की, किसी से आगे बढ़ने के लिए, या कैसे भी किसी की शिकायत करना, किसी की लेग पुलिंग करना, ब्लेम गेम करना, ये सब डेंजरस है बहुत। क्योंकि ये सब क्या करेगा, फिर आपका ज्ञान योग से अलग ही आप रास्ते पे चले जाएंगे। उसके अलावा हंसी मजाक, ये भी एक डेंजर का हुआ है। हंसी मजाक करना अच्छा है, लेकिन कभी कभी बहुत बार देखा है कि हंसी मजाक में बहुत बड़ा इश्यू बन जाता है, और फिर वो जो डैमेज होता है संबंधों में, वो फिर आगे जाकर के फिर वही वाली बात हमेशा बीच बीच में, जैसे जैसे होता है कभी कभी थोड़ा ऊपर नीचे, तो फिर से वो वाला जो जख्म होता है वो ताजा हो जाता है। इसलिए हंसी मजाक भी बहुत अलौकिक होनी चाहिए। क्या? किसी को टॉन्ट लगाना, किसी को ऐसा बोलना इंटेंशनली, ये सब डेंजरस है। और वो तो और कौन कौन सी ऐसी बातें जो डेंजर है? क्या? स्वार्थ भाव रख करके संबंध बनाना। कल वो जो एक मुरली चली थी ना बीच में, सेवार्थ, स्वार्थ और सेवार्थ, सफलता के लिए सेवा बहुत जरूरी है। सेवार्थ चाहे लौकिक है चाहे अलौकिक है, तो स्वार्थ नहीं होना चाहिए। वो डेंजरस है, किसी की कमजोरी देखना या सुनाना हाँ वो बहुत डेंजर है। क्योंकि हमने देखा है कि कई लोग कहते हैं ना कि जैसे हम शुरू में आए तो हमारा बहुत अच्छा पुरुषार्थ था, और फिर अभी नहीं है, तो अभी नहीं है तो क्यों नहीं है? उसका एक रीजन ये भी है, एक तो हमारी सूक्ष्म अवज्ञा है जिसका बोझ है, उसके अलावा ये भी है कि हम दूसरों की छोटी छोटी गलतियां देखना शुरू करते हैं। पहले हमारे में बहुत भावना होती है सबके लिए कि ये तो दैवी परिवार है और ये सब तो देवी देवता हैं, लेकिन फिर आगे जाकर के धीरे धीरे जब दूसरों की कमियां देखना शुरू करते हैं तो फिर उनका उल्टा गायन शुरू करते हैं, और उससे फिर हमारी जो भावनाएं यज्ञ के लिए या बाबा के लिए, उसमें भी कहीं ना कहीं वो आ जाता है। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि मेरे दिल तक तपे, तुम मेरे नैनों के नूर हो, और अगर आप किसी की परचिंतन करते हो तो धुआं उड़ाते हो, और किसी की आंखों में बैठ करके अगर धुआं उड़ाओगे तो क्या हालत होगी उसकी? तो बाबा ने वो कहा था उसमें, और अंदर बाहर एक दूसरा खौफनाक डेंजर है वो। और एक बहुत बड़ी बात है डिजिटल डिजिटल माया, तो वो भी बहुत रिस्की हो जाता है कई बार, क्योंकि हम जब एंटर होते हैं तो अब हम कुछ पर्पस से एंटर होते हैं, लेकिन एक के बाद दूसरा मोटिवेशनल वीडियो, फिर और, तो उससे क्या होता है कि टाइम तो हमारा वेस्ट होता है, हाथ में कुछ नहीं आता। अच्छा लगता है सुनने में, अच्छा लगेगा, लेकिन हाथ में कई बार कुछ नहीं आता है, तो उसको और उससे फिर धीरे धीरे लौकिकता की तरफ हमारा एक संसार की तरफ बहाव शुरू होता है। तो वो शुरू में पता नहीं चलता, लेकिन हम स्लोली स्लोली वो जिब्रा क्रॉसिंग से अलग रास्ते पे जा रहे होते हैं। इसलिए डिजिटल यूज के समय बहुत प्रिकॉशियस रहना है। फोन पे बातें करना, ये सब भी घंटों तक, 10 मिनट से ज्यादा बात करना तो अलग होता है। या फिर ये नियम बना दो कि 3 मिनट से ज्यादा होती है तो कट कर दो, फिर से फोन लगाओ, फिर से बात करो। नियम बना लो ऐसा कि बाथरूम में या गैलरी में बाहर कहीं ऐसे एकांत एकांत ढूंढते हो उसके लिए, टेरेस पे जाते हैं, बालकनी में जाते हैं। और क्या होगा? वो भी इसी में आएंगे, फैशन पहनावा। उसमें भी सफेद कपड़ों में भी कितनी वैरायटी, घड़ियां अलग अलग, वॉचेस, अच्छी डायरी, अच्छी, मतलब सब कुछ अच्छा अच्छा है, करना चाहिए, लेकिन उसमें आसक्ति कितनी है वो इम्पोर्टेंट। आसक्ति ना हो हमारी उसमें, रस ना मिले उसमें, कहीं पे भी रस आया वो भी डेंजर है। खाने में, सोने में, वो दोनों मेन है जिसमें रस आता है हमें, मतलब अच्छा लगता है, आसक्ति होती है उसके अंदर, बोलने में, सुनने में, जहां पे भी रस आता है वहां से फिर बाबा से हमारा जो कनेक्शन होता है या बाबा से जो रस मिलता है उसमें डाइल्यूशन हो जाता है। तो इसलिए ये एक अभ्यास करना चाहिए कि कुछ भी करे, घड़ी पहनो तो पहनना है तो पहनो, खाना हो तो खाओ, लेकिन उसमें आसक्ति ना हो, मतलब वो हमारी खुशी का या रस का कारण ना बने वो भोजन। बाबा ने शायद रमेश भाई को कहा था कि घड़ी उन्होंने कुछ पहनी थी, तो बाबा ने कहा था कि बच्चे घड़ी, हाँ कॉस्ट। हाँ बाबा ने कहा बच्चे घड़ी कितने की भी हो लेकिन टाइम तो सही वो ही बताएगी, और कौन कौन से दिनचर्या में विघ्न आते हैं और उसको कैसे एड्रेस एड्रेस करें हम। कोई आरोप करता है या कोई कोई आपको गलत तरीके से परेशान करता है तो क्या करें? क्या सांसारिक इच्छाएं। जैसे धन की होती है कई बार, मतलब ये ब्राह्मण जीवन, जैसे धन को माया गलत नहीं कहा है योगियों ने, क्योंकि धन आवश्यकता है, लेकिन वो आवश्यकता हमारी इच्छा ना बन जाए। तो धन जो आवश्यकता और इच्छा में क्या अंतर होता है? आवश्यकताएं कम होती है, इच्छाएं हाँ दुष्पूर होती है, इच्छाएं दुष्पूर होती है जो कभी पूरी नहीं होती। आवश्यकताएं जैसे एक पंछी है, एक पिंजरा है, उसके उसके बाहर एप्पल रखा है, एक पंछी आता है और वो एप्पल को खाता है और उड़ के चला जाता है। वो पंछी दूसरे दिन आता है, अभी पिंजरे में अंदर एक एप्पल रखा है और बाहर एक रखा है, वो पंछी बाहर वाला खा जाता है, लेकिन उसकी नजर अंदर वाले एप्पल पर जाती है। उसकी आवश्यकता नहीं थी, रोज आता था वो और खा के खुश होके चला जाता था, लेकिन अभी उसकी नजर अंदर वाले एप्पल पर गई तो उसने बहुत चोंच लगाई, बहुत कोशिश की, बहुत उड़ा और बहुत उसने ट्राई किया, लेकिन फिर भी अंत में उसके हाथ में वो नहीं आया और वो दुखी होकर के उड़ गया। तो रोज भी वो एक ही एप्पल खाता था, आज भी एक तो उसने खाया लेकिन आज वो दुखी हुआ। तो आवश्यकता और इच्छा, तो उसका एक वो आवश्यकता है वो जिब्रा क्रॉसिंग है, और इच्छाएं वो अलग डेंजरस जोन है, जे वॉक है, जे वॉक है। और मतलब उसको देखते देखते जाना, साइड सीन्स देखते देखते अगर क्रॉस करते हैं तो ये भी जे वॉकिंग है. हाँ, अक्सर देखा है कि जो शांति से क्रॉस करता है खड़ा रह करके तो प्रॉब्लम नहीं होता. तो वो जो क्रॉस करता है स्लोली अगर करता है तो सामने वाले को भी पता रहता है कि डिसीजन वो ले सकता है कि ये क्रॉस कर रहा है या खड़ा है, तो वो अपने हिसाब से जा सकता है. नहीं तो अगर हम स्पीड में जाते हैं तो उसको जजमेंट नहीं आता है. वैसे ज्ञान में भी हम जब स्पिरिचुअली चलते हैं तो कई बार लोग बहुत जोश में हो, जोश ठीक है लेकिन उसके अंदर होश भी होना चाहिए और एक हमारा एक रस होना चाहिए. ऐसे नहीं कि एक दिन में बहुत योग कर लिया दूसरे दिन में अलग ही है. तो वो भी वो एक बहुत डेंजर है जब हम सोचते हैं कि हम ही अच्छे हैं दूसरे अच्छे नहीं. इवन अज्ञानी लोगों के लिए सोचना ये भी डेंजर है. हाँ, मतलब जिनको ज्ञान नहीं है उनके बारे में भी ऐसा सोचना ये भी बहुत डेंजर है और वो हमें कहीं ना कहीं बेहद से एक हद में लेके आता है जो सेवा नहीं होने देता. उसका भी कल्याण होने उसको भी वो परिचय में आएगा उसका कल्याण हो जाएगा. वो भी हो सकता है. जैसे दादी है ना, दादियां जब डॉक्टर से मिलती है, जैसे दादी गुलजार के लिए भी कह रहे थे कि वो डॉक्टर कहते हैं कि अलादीन का चिराग है. वो मुस्लिम डॉक्टर था बॉम्बे में, कोई सुना रहा था थोड़े समय पहले, क्या कि दादी को जैसे मिलते हैं तो कहते हैं डॉक्टर कि ये तो अलादीन का चिराग है. तो वो दादियां जैसे सेवा करती है वैसे हमारा कभी ऐसा एक्सीडेंट से किसी से मिलना हो जाए तो हो सकता है वो भी सेवा का एक माध्यम बन जाए. और कोई जे वॉक, स्पिरिचुअल जे वॉक. कई बार लोग पैसे इन्वेस्टमेंट और उन सब में भी बहुत बुद्धि चलाते हैं, कैसे उसको बढ़ाए, कैसे मार्केट, शेयर मार्केट और ये सब. ये हमारा लक्ष्य नहीं है और ये सब जे वॉकिंग है. ये बहुत डेंजर है, कहाँ जाके रुकेंगे पता नहीं. संग, संग से हट करके संग दोष, लौकिक और अलौकिक दोनों में भी संग दोष हो सकता है. कि ये हमारे परमानेंट दोस्त है. संग तो चाहिए, कुछ ग्रुप होना चाहिए, तो ये ग्रुप बनाना और ये सब भी. तो स्पिरिचुअल जे वॉकिंग में अगर हम समराइज करें तो एक तो दिनचर्या, घूमना फिरना, कहाँ जाए, इधर जाए उधर जाए, देखते रहना, ये भी जे वॉकिंग है. नेक्स्ट नेक्स्ट प्लान बनाओ. और खाने पीने पे ज्यादा ध्यान देना, भोजन को ही भगवान समझ लेना, या भोजन जिंदा रहने के लिए खाते हैं, नहीं खाने के लिए जीते हैं, वो बना देना. और जर्नी, फूड फॉर जर्नी, जर्नी फूड. जर्नी फॉर फूड. दिनचर्या, फिर संग, फिर योग. ये भी एक है कि हम कई बार ज्ञान, हर चीज माया बन सकती है कई बार, या हर चीज अति में जाती है तो वो स्पिरिचुअल जयवॉक बन सकती है. इवन जैसे हम बाहर की किताबें कुछ अच्छी होती है तो पढ़ना शुरू करते, ठीक है पढ़ सकते हैं कभी कभी, लेकिन कभी कभी वो ही माया बन जाती है और फिर मुरली से शिफ्ट होके अटेंशन उस पे चला जाता है. अच्छा लगता है वो पढ़ना, उससे आपकी गिरावट नहीं हो रही है लेकिन सूक्ष्म में हो रही है, आपको उस समय पता नहीं चल रहा है क्योंकि आप मुरली और ये बाबा ने तो नहीं कहा है, फिर भी आप पढ़ते हैं तो वो अलग बात है, उसको थोड़े समय के लिए अलग रखे, इसको कॉम्प्रोमाइज करके वो नहीं करे. तो वो भी है, हर चीज माया बन सकती है. एकांत में जाना, अभी बीच में हम बहुत जाते थे तो वो भी माया बन सकते, उसमें भी बहुत टाइम वेस्ट होता है या उसका भी चस्का लगता है, तो फिर कॉम्प्रोमाइज होता है. ऑनलाइन शॉपिंग, हाँ ये सबसे बड़ा जो वॉकिंग है. पावरफुल है. न्यूज, समाचार, टीवी, गेम्स. कुछ खरीदते नहीं है. इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना बहुत सारी, ये भी बहुत, जिससे हमारा मतलब नहीं है वो सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, जिस गांव जाना नहीं उसका रास्ता पूछने का क्या फायदा है, या जिस फल को खाना नहीं उसके पत्ते गिनने का क्या फायदा। इन्फॉर्मेशन भी स्पिरिचुअल जे वॉकिंग है, मतलब जो इन्फॉर्मेशन जरूरी नहीं, चाहे वो पॉलिटिक्स की हो, सोशल हो, या कोई भी जरूरी नहीं। तो इसका समरी ये कर सकते हैं हम कि पूरे दिन में हमारा उतना अटेंशन रहे और हमारा फोकस्ड पुरुषार्थ हो कि कहीं पे भी हम साइड सीन पे या कहीं और रास्ते पे जाने का कहीं पे भी मार्जिन ना रखें, उतना हम अपनी दिनचर्या को टाइट करके रखें, तो फिर ये स्पिरिचुअल जे वॉकिंग से हम अपने को बचा सकते हैं। ओम शांति।